तो आज हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। 8 से 12 तक के श्लोकों का थीम ये है कि भगवान किस प्रकार से इस जगत में प्रवेश करके अपनी विभूतियों के द्वारा इस जगत का पालन कर रहे हैं। समझ में आया थीम क्या है? किस प्रकार से भगवान पालन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया था कि भगवान इन दोनों शक्तियों से जगत को धारण कर रहे हैं, जीव शक्ति और माया शक्ति, और वह उससे परे हैं। अपने स्वरूप के बारे में बताया। अब आप इस इन श्लोकों में बताएंगे कैसे अपनी विभूतियों अर्थात अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत को मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन मतलब पालन कर रहे हैं। हाउ कृष्णा इज मेंटेनिंग दिस यूनिवर्स थ्रू इज एनर्जीज, इट विल बी द थीम ऑफ टेक्स्ट नंबर 8 to 12। ठीक, तो हम बोलते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेया,
सुकौन्तेया
रसोहम अप्सु कौन्तेया,
रसोहम अप्सुकौन्तेया,
प्रभास्मि शशि सूर्ययोः,
प्रभास्मि शशि सूर्यो,
प्रणवः सर्ववेदेषु,
प्रणवः सर्ववेदेषु,
शब्दाखे पौरुषं दृषु।
शब्दाखे पौरुषं दृषु।
अप्सु अर्थात जल में मैं रस हूं, और प्रभा हूं शशि और सूर्य की, चंद्रमा और सूर्य की प्रभा मैं हूं। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, प्रणव सर्ववेदेषु, सारे वेदों में मैं प्रणव हूं, ओम हूं। और शब्द खे मतलब होगा आकाश, आकाश में मैं शब्द हूं। और नृषु, नृषु मतलब इंसानों में मैं पौरुष हूं, पौरुष मतलब कुछ करने की क्षमता, द एबिलिटी टू डू समथिंग। इस प्रकार से मैं उनको धारण कर रहा हूं। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। गीता भूषण टीका। भगवान ही सभी जगत के पालन करता है, इस तथ्य को भगवान इन 5 श्लोकों में प्रदर्शित कर रहे हैं। स्पष्ट है? तो समझाना नहीं है। अब इसके बाद जो लाइन आ रही है, इसको आपको बहुत ध्यान पूर्वक समझना होगा। मैं पानी का स्वाद हूं, इसको आप सामान्यतः स्वाद के रूप में समझेंगे, जैसे हम स्वाद समझते हैं, और सही अर्थ है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसको किस अर्थ में समझना है वह थोड़ा देखना पड़ेगा। पानी का स्वाद, इसको रस कहा जाता है, और ये एक विशेष प्रकार का गुण है पानी का। ठीक है, कठिनाई या जो सूक्ष्म बात है वह यह समझने की, इस गुण को यदि पानी से निकाल दिया जाए तो पानी की सत्ता नहीं रहेगी। इस गुण, रस के गुण जो है, इसके ऊपर पानी आधारित होता है। इसको पहले पहले भी मैंने समझाया था। सृष्टि में बहुत सारे तत्व हैं जिनसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, इंग्रेडिएंट समझते हैं, अवयव हैं जिससे वस्तुओं का निर्माण होता है, और उसमें एक 5 प्रमुख अवयव हैं जिसे कहा जाता है तन मात्रा। क्या कहा जाता है? तन मात्रा, जिसको हम लोग इंद्रिय विषयों के रूप में भी जानते हैं। इंद्रियों के विषय क्या रूप हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। और ये इस सृष्टि के अवयव भी हैं। समझ में आ रहा है? ये बात समझ लेंगे तो उसका सारे जो 50। जी, अव्यय मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स। जैसे मैं कहूँ खिचड़ी किससे बनती है, तो चावल, दाल, हल्दी, जल। अब जल ही निकालेंगे तो खिचड़ी कैसे बनेगी? तो खिचड़ी की सत्ता जल पे निर्भर करती है कि नहीं? अव्यय मतलब इंग्रेडिएंट्स, किन वस्तुओं, वो उसके घटक क्या हैं? घटक समझते हैं, जैसे आप लोगों के गो अर्क में से, गो अर्क जो बनाते हैं उसमें से गोमूत्र निकाल लीजिए तो फिर क्या बचेगा उसमें? कुछ नहीं बचेगा। तो उसका इंग्रेडिएंट क्या है? समझ में आया? तो ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर समझ में आ जाएगा सारा कुछ, बहुत आसान है। तो थोड़ा मैपिंग कर लीजिए, या अगर कॉपी है तो उसमें लिख लीजिएगा। खे मतलब होता है आकाश, और आकाश का तन्मात्रा है शब्द। ठीक है, उसके बाद आकाश के बाद आई अग्नि, अग्नि की तन्मात्रा है रूप। तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला तत्व था आकाश। तो आकाश का निर्माण किससे होता है? शब्द से। भगवान ने बोला ना यहाँ पे, शब्दे खे पौरुषम दिशु। तो आकाश तत्व का निर्माण या उसकी तन्मात्रा जो है वो है शब्द। उसके बाद आई अग्नि, अग्नि की तन्मात्रा है रूप। गुड। और उसके बाद आई वायु, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श। उसके बाद आया जल, जल की तन्मात्रा है रस, जिसको भगवान ने यहाँ पे बोला है रस की वजह से ही जल की सत्ता है। समझ में आ रहा है? सत्ता समझते, एग्जिस्टेंस अस्तित्व है। और पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध। तो गंध भी भगवान आगे बताएंगे, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च। तो अब उसी अर्थ में सारे श्लोकों को समझना होगा। ये समझ लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तन्मात्रा आप लोग को समझ में आ गया? क्या चीज तन्मात्रा? सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो न सिर्फ ये इंद्रिय विषय हैं, अपितु इन तत्वों को धारण करने के घटक भी हैं। मतलब ये इन जो भी तत्व आपने सुने थे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनका आधार है ये तन्मात्रा। समझ में आया? इसका अर्थ है कि मैं इन तत्वों में निवास करता हूं, क्योंकि तन्मात्राओं के द्वारा जो मेरी विभूति है, मैं इन तत्वों का पालन करता हूं, जैसे रस जल के लिए। अब समझ में आया? भगवान जल को धारण कर रहे हैं, उसमें अपनी विभूति रस के रूप में प्रवेश करके। ये लाइन समझ में आ रही है? जल की तन्मात्रा क्या है? रस। और रस किसकी विभूति है? विभूति मतलब शक्ति। देखिए, कोई भी शब्द ना समझ में आए तो आप बेझिझक मुझसे पूछ लीजिए। अगर उसका अर्थ आप कुछ और ग्रहण कर रहे हैं, तो ये तत्व की बात है, समझ में नहीं आएगी। मैं खाली बोल रहा हूं कि विभूति का अर्थ समझते हैं। विभू मतलब महान। तो विभूति मतलब महान शक्ति। समझ में आ रहा है? तो रस किसकी विभूति है? भगवान की। तो भगवान अपनी विभूति के द्वारा जल को धारण कर रहे हैं, और जल के द्वारा सबका पालन हो रहा है। आप समझ में आ रहा है भगवान किस प्रकार से पालन कर रहे हैं? ठीक। तन मात्रा के बिना कोई भी तत्व की सत्ता नहीं रह सकती। तत्व अर्थात भूमि, जल, वायु इत्यादि सब। सत्ता नहीं है, सत्ता मतलब अस्तित्व। हाँ ठीक है। नोट, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी अपने अपने तन्मात्राओं से आते हैं, यथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब तो मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा। मैं चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूं, और उनको प्रकाश रूपी अपनी विभूति से धारण करता हूं, और इस प्रकार मैं उनमें हूं। तो जब भी हम चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश देखें, तो भगवान की विभूति का स्मरण करके भगवान का स्मरण होना चाहिए। आप कहेंगे प्रभु जी हमको होता नहीं है, क्योंकि हम लोग सुने नहीं है। तो जब बार बार सुनते हैं, तो फिर उस बात को स्मरण करने लगते हैं। जैसे अगर किसी भक्ति भक्त के गुणों के बारे में हम सुनते हैं, तो जब उस भक्त को देखेंगे या उस व्यक्ति को देखेंगे, तो उस गुण का स्मरण होता है। अगर उसके दुर्गुणों को सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, तो जितनी बार उसको देखेंगे, तो उतनी बार दुर्गुणों का स्मरण होता है, नहीं होता? ऐसे अन्यथा आप उसको देखेंगे, उस व्यक्ति को देखेंगे, तो कुछ स्मरण नहीं होता, नहीं होता कि नहीं? जैसे एक भक्त ने मुझे आज बोला कि ये फलाने डिवोटी जो है वो 32 माला जप करते हैं। या मैं कहूं कि कोई व्यक्ति 3 लाख नाम जप करता है, ऐसे उस भक्त को आप देखेंगे तो कुछ स्मरण होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने सुन रखा है कि 3 लाख नाम जप करता है, जितनी बार आप सुनेंगे तो उसके देखेंगे उसको, उसके गुणों का स्मरण होगा। मेक सेंस? भाई जैसे आप लोग मान लीजिए कोई पहली बार वृंदावन आए, और ये कालिया कालीदाह पे चला जाए, तो उसे क्या लगेगा? है पेड़ है। लेकिन जब वो बार बार सुनेगा कि भाई भगवान यहाँ से कूदे थे, तो जितनी बार वो परिक्रमा करेगा, देखेगा तो हाँ भगवान यहाँ से कालिया में धाम में कूदे थे। तो श्रवण का ये प्रभाव है कि हमारी दृष्टि को परिवर्तन कर देता है। देख पा रहे? समझ पा रहे? ठीक। तो इसलिए बार बार सुनने से बात याद रहती है। तो यही बात आप देखेंगे दशम अध्याय में भी आएगी, केशु केशु च भावेशु, मतलब मैं किस प्रकार से जगत की वस्तुओं को देख करके आपको स्मरण कर सकूं, ये मुझे बताइए। तो भगवान फिर अपनी विभूतियों को वहां पे बताएंगे। तो कारण यही है कि जगत की वस्तुओं को देखकर हम किस प्रकार से भगवान का स्मरण कर सकें। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों को भी देखना होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रकाश हटा लेंगे तो क्या बचा उसमें? समझ में आया? तो उसका जो असली तत्व है, जो धारण कर रहा है चंद्रमा और सूर्य को, वो क्या है? प्रकाश। तो उस प्रकाश को देख करके स्मरण करना चाहिए कि भगवान कृष्ण की विभूति है। अनुपम कृष्ण प्रभु, विभूति का अर्थ क्या होता है? माइक बताइए। हाँ ठीक, हाँ शक्ति। और अवयव का अर्थ क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स। समझ में आ गया? कुणाल प्रभु, किन तत्वों की बात कर रहे हैं? माइक पे बताइए। आइकॉन कर लीजिए। हाँ, किन तत्वों को भगवान धारण कर रहे हैं?
जो पांच तत्व आपने बताए थे, स्पर्श रूप रस
देखो मैं इसीलिए गड़बड़ कर रहा था। किन तत्वों को भगवान धारण कर रहे हैं? पृथ्वी, जल,
जल,
अग्नि, वायु, आकाश।
इनके थ्रू
और किनके द्वारा धारण कर रहे हैं?
पांच स्पर्श रूप रस गंध और शब्द इनके
और इनको
थ्रू
क्या कहते हैं?
तन्मात्रा
तन मात्र।
अव्यय घटक इनके।
ये अवयव है, अव्यय नहीं, अवयव, अवयव। ठीक है,
अव्यय
ये कठिनाई हम लोग सब कॉन्वेंट में पढ़ते पढ़ते हिंदी भूल गए कि नहीं। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे तो सीधी मारे। अवयव है, अवयव मतलब पूरी सृष्टि के अवयव है। सृष्टि बहुत सारे 24 तत्वों से बनी है ना, तो उसमें तन्मात्रा भी जो है ये अवयव है। अगर उनको हटा देंगे तो सृष्टि विघटित हो जाएगी। विघटित मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। हाँ,
आकाश का निर्माण शब्द से किस प्रकार से हो रहा
इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा श्रीमद् भागवत में सृष्टि का। और इसके ऊपर सबसे आप प्रश्न बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि इस पे आप अगर चाहें तो भक्ति विज्ञान महाराज का पावर ऑफ साउंड करके पूरा सीरीज सुनिए। हाँ, बहुत सुंदर है कि पूरा जगत की सृष्टि शब्द से होती है। और प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, जैसे आपने सुना है ना ओम से पूरे जगत की सृष्टि हुई, तो वो शब्द से ही पूरे जगत की सृष्टि होती है।
कैसे कैसे हो रही
देखिए,
है?
ये वर्णन नहीं होता कि कैसे होता है, खाली ये बताया गया कि ये वस्तुओं से मिलती हैं और उसका वर्णन, ये मतलब सृष्टि हो जाती है। रूप जो है वह मुझे डिटेल में अभी पूरी तरह से याद नहीं, सृष्टि कैसे होती है, इसका सीक्वेंस है। शब्द से आकाश, शास्त्री जी आप बताना चाहते हैं कुछ? ठीक है ना, ठीक है, यही बताना चाहते हैं। ठीक है, शब्द से आकाश आता है, फिर आकाश के बाद अग्नि आती है। किस प्रकार से दिखाइए? आकाश में ध्वनि का गुण, वायु में ध्वनि और स्पर्श का गुण। हाँ, ये ठीक है, मैं भी बोला, लेकिन डिटेल में नहीं समझा जाता कि कैसे होता है, ये हम समझ भी नहीं सकते शायद, इसलिए तो सृष्टि के बारे में समझना तो बड़ा कठिन है। इसको श्रीमद् भागवतम से आप पढ़ सकते हैं तो समझना पड़ेगा। मैं सभी वेदों में प्रणव हूं, क्योंकि प्रणव ही वह मूल है। एक दिन हम लोग कभी करेंगे सेमिनार सृष्टि के बारे में, अभी तो उस पर रिसर्च करके पढ़ेंगे। मेन सीक्वेंस यही है कि शब्द से आकाश, उसके बाद आकाश से वायु आती है, और वायु में तन्मात्रा स्पर्श की रहती है, नहीं सॉरी क्षमा कीजिएगा, अग्नि आती है, अग्नि के बाद वायु, वायु वायु के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। ठीक है, मैं सभी वेदों में प्रणव हूं, क्योंकि प्रणव ही वह मूल है जो शब्द के चतुर्थ रूप अर्थात वैखरी के रूप में प्रकट होता है, जिसमें शब्द सुने जाने वाले ज्ञान युक्त वैदिक वाक्यों के रूप में प्रकट होता है। अब ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन देखिए साउंड या शब्द की जब भी हम धारणा करते हैं तो वैसा ही हम समझते हैं जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो और इसको उसको समझ पा रहे हो, इसको वैखरी कहते हैं। जो आप शब्द सुन रहे हैं इसको वैखरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैखरी। लेकिन शब्द की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे सूक्ष्म अवस्था होती है परा, उसके बाद पश्यंती, उसके बाद मध्यम, उसके बाद हम पश्यंती, फिर मध्यमा और फिर वैखरी। शब्द याद हो रहे हैं? परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परा शब्द शुद्ध होता है, सबसे आध्यात्मिक लेवल पे होता है, और वह हमारे जो रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला भाग होता है, उसमें मूलाधार चक्र होता है, वहां प्रकट होता है। उसके बाद हमारा जो पश्यंती वाक है वह हमारे नाभि के पास जो चक्र होता है उसमें वह प्रकट होता है, ये मानसिक स्तर पे होता है। और मध्यम जो है वह अनाहत हृदय के पास होता है, बुद्धि के स्तर पे प्रकट होता है, और वैखरी के रूप में हमारे कंठ के बाहर प्रकट हो रहा है, जैसे भी प्रकट हो रहा है, इस प्रकार से शब्द प्रकट होता है। यह 4 हमें क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि इंद्र ने शाप दिया है। अब इसको अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा, आप भक्ति विज्ञान महाराज का बहुत बड़ा सेमिनार है उसको आप सुन सकते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन पावर ऑफ साउंड वो समझा रहे थे किस अनावृति शब्दार्थ, शब्द से ही हमारी अनावृत्ति, जिस प्रकार से शब्द से इस जगत की सृष्टि हुई है भौतिक शब्द के द्वारा, उसी प्रकार से आध्यात्मिक शब्द से हम इस सृष्टि को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। प्रभुपाद इसको कई बार कोट करते हैं, अनावृति शब्दात। अनावृति शब्दात मतलब शब्द के द्वारा, आध्यात्मिक शब्द के द्वारा हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। ये बात ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आश्चर्य की बात नहीं है, पूरा पूरा समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका सार ये है कि जो इच्छाएं हैं वह भी एक शब्द का ही रूप है। ये जो इच्छाएं दिखती हैं आपको हृदय में, ना ऐसे कैसे बोल सकते नहीं है, अपितु आप इच्छाओं को दिखती का मतलब है इच्छाओं को प्रायः सुन सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से विचार करें तो यह सब पश्यन्ति वाक इत्यादि कहे जाते हैं। मानसिक रूप में जो इच्छाएं प्रकट हो रही हैं वह भी एक शब्द के रूप में होती हैं। अब मैं ज्यादा समझाऊंगा तो बहुत लोड हो जाएगा, प्रोसेसर उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, लेकिन हम जो है इसके लिए है एक्चुअली बहुत रोचक विषय है। जो अंग्रेजी जानते हैं उसको पढ़ेंगे और सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत मतलब सुंदर विषय है। खैर नोट, शब्द की चार अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को परावाक कहा जाता है, जो शब्द की सबसे सूक्ष्म अवस्था होती है और जो प्राण के रूप में मूलाधार चक्र में प्रकट होती है। मूलाधार मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले भाग में होता है, एकदम लास्ट पॉइंट। दूसरी स्थिति पश्यन्ति वाक कहलाती है, जो नाभि के पास स्थित मूलाधार चक्र के स्थान, मूलाधार नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, इसको कुछ और कहते हैं, मैं ना भूल रहा हूँ, गलत है ये, उस चक्र के स्थान पर प्रकट होती है। ये पता है ना, हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, तो उसी अलग अलग चक्रों पर स्थान पे ये शब्द प्रस्तुत होता है और ये मानसिक स्तर पे होता है। शब्द की तीसरी स्थिति हृदय के पास स्थित अनाहत चक्र में होती है, ये हृदय के पास में। बुद्धि के स्तर पर मध्यमा वाक्य के रूप में प्रकट होती है। चौथी स्थिति में शब्द अर्थपूर्ण वाक्यों के रूप में हमारे कंठ से प्रकट होता है, जिसे सुना जा सकता है और उसे वैखरी वाक कहा जाता है। तो वैखरी आप समझ रहे हैं, वैखरी तो समझ में आ रहा है ना, ये जो मैं बोल रहा हूं जो आपको कान से सुनाई पड़ रहा है इसको वैखरी कहते हैं। तो जो नोट से कहने का अर्थ है कि जब भगवान कह रहे हैं कि शब्द शब्द खे पौरुषम नृषु, तो शब्द खे आकाश में जो शब्द तत्व है वह शब्द केवल वैसे ही नहीं सोच लेना चाहिए जैसे हम बोल रहे हैं बस वही शब्द है, शब्द के भी चार विभाग हैं, उसके रूप में भगवान विद्यमान है, बात समझना चाहिए। ठीक है, आकाश में उपस्थित शब्द रूप तन्मात्रा में मैं हूं। शब्द रूप तन्मात्रा मतलब आकाश का तन्मात्रा क्या है, शब्द, उसके द्वारा आकाश को धारण कर रहे हैं। मैं वह प्रयास हूं जो मनुष्य के लिए फल लेकर लेकर आता है, क्योंकि उन प्रयासों के द्वारा ही मनुष्य की स्थिति बनी रहती है। बहुत सुंदर बात है कि जगत में क्या हमें जीवन जीने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, तो वह प्रयास भी कौन है, भगवान है। तो इस प्रकार से हमें कुछ करने की शक्ति भी कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। इस प्रकार से हम भगवान पे आश्रित हैं, भगवान हमारा पालन कर रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए, बहुत इजी है श्लोक, पढ़िए तात्पर्य।
एक प्रश्न है, हाँ जी, ये जो चक्र होते हैं हमारे शरीर में, ये सब कॉन्शियस होते हैं?
नहीं नहीं, कॉन्शियस नहीं,
जड़ होते हैं,
जड़, सब कुछ जड़ है। कॉन्शियस तो देखिए केवल आत्मा है, जितने भी चक्र इत्यादि हैं वे कभी कोई शरीर कोई भी भौतिक वस्तु कॉन्शियस नहीं है। जागृत करना एक अलग बात है, जैसे हमने इस बल्ब को जागृत कह सकते हैं, कर दिया, करंट उसमें प्रवाहित कर दिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बल्ब कॉन्शियस हो गया। कॉन्शियस सचेत व्यक्ति केवल आत्मा ही है। ठीक है,
तात्पर्य, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी।
परा मतलब
आत्मा, जी,
गुड। अपरा मतलब बहुत अच्छा, गुड।
परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते
हैं। बहुत सुंदर है, कल से भी आप लोग इस बात को याद रखेगा, जब हम लोग जप कर रहे होते हैं तब देख सकते हैं कि पहले सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, पहले हल्की रोशनी दिखाई पड़ती है, तो क्या आप समझ नहीं जाते कि सूर्य उदित हो गया, क्या सूर्य दिख रहा है, लेकिन सूर्य के आकाश, सूर्य की रोशनी आकाश में प्रस्तुत होने के कारण आप सूर्य को देख पाते हो। तो इस जगत में भले ही हम भगवान को भी ना देख सकें, लेकिन उनकी शक्तियों को तो देखते हैं, शक्तियों को देखने के द्वारा भगवान का अनुमान कर सकते हैं। यस,
जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है।
अब आप बताइए कि प्रभुपाद जी क्या टीका से नहीं ले रहे हैं, हम उसको देख नहीं पाते, ये बात रहता। केवल हम स्वाद को वैसे समझेंगे जैसे बस जैसे गोभी का स्वाद और मूली का स्वाद इस प्रकार से, लेकिन मूलभूत गुण है, मतलब उससे अगर वो गुण हटा दिया गया तो जल अस्तित्व नहीं रह पाएगा। यस, इसीलिए मैं टीका पढ़ाता हूं ताकि समझ में आए प्रभुपाद जी वो बात क्यों बोल रहे हैं, भले थोड़ा कठिन लगे आप लोगों को। यस
प्रभु जी, लेकिन जैसे कुछ साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि वाटर इज टेस्टलेस ओडरलेस, इसके लिए क्या कहेंगे?
बिकॉज दे आर ब्रेनलेस, उनके पास कोई बुद्धि नहीं है। कभी कभी हम लोग साइंटिस्ट पे इतना विश्वास करते हैं, आप बताइए कि क्या उसमें और आप में कोई भेद है? विचार कीजिएगा, उसकी इंद्रियां भी उतनी ही अपूर्ण है जितनी मेरी। वो झूठ बोल बोल करके प्रस्तुत करता है कि हम वो सच बोल रहा है। जैसे अभी ये लोग वायरस के लिए बोल रहे हैं कि 1.5 साल में हम इसकी वैक्सीन खोज लेंगे। जरूरी है? हो सकता है कि 10 साल में भी ना खोजें। और आप ये भी जानते हो कि खोज में भी भगवान जब बुद्धि देंगे तभी वे खोज पाएंगे।
तो प्रभु जी, जैसे उसमें अगर
नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये लोग अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा लगता है कि सब कुछ जानते हैं, ऐसा हम लोग को विश्वास हो जाता है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जब सब कुछ जानते हैं। यस,
जैसे पानी में भगवान जैसे बता रहे, पानी में स्वाद जो हूँ मैं हूँ, फिर वो हम जो पानी पीते हैं तो हमको वो आनंद सुख की क्यों फील क्यों नहीं होता है?
कभी आप देखेंगे जब हम लोग निर्जला करते हैं तो पानी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहो कि थम्सअप पिला दिया जाए या और कोई जूस पिला दिया जाए, पहले पानी चाहिए। आप कई बार देखिए, लोगों आपसे पूछेंगे अगर मैं क्या दूध लाऊं, मट्ठा लाऊं, कहते नहीं बस बस पानी दे दीजिए। हाँ, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, उसका स्पेशल गुण है। और अन्य वस्तुओं में भी स्वाद पानी की वजह से आता है। आप देखिए, अगर जीव सूख जाए तो खाने का स्वाद भी नहीं आता ठीक से। कभी होता है ना, थोड़ा पानी पिए तब मुंह में कुछ गीलापन आए, तब जाकर के आप स्वाद का अनुभव कर पाएंगे। अगर स्वाद को हम वैसे ही समझें जैसा कि हम समझ रहे हैं, उस दृष्टि से भी देखा जाए तो ये जो साइंटिस्ट हैं उनकी बात को स्वीकार करने में दिक्कत ये है कि वह स्थूल वस्तुओं के अधिक कुछ सोच ही नहीं पाते। सूक्ष्म वस्तुओं का चिंतन वो कभी नहीं कर सकते, वो सोच भी नहीं सकते कि शब्द के 4 लेवल हो सकते। तो इस ज्ञान को वेद से स्वीकार करना चाहिए।
तो जी, मतलब ये जो बात भगवान कह रहे हैं कि मैं पानी में जो स्वाद वो मैं हूँ, इसको लिटरली समझना है कि लाइक
यस, लिटरली समझने का मतलब है कि भगवान की विभूति, अभी हमने पढ़ा था, भगवान की शक्ति है।
या फिर व्यक्ति जैसे प्रभुपाद जी अपने एक पुस्तक में, मुझे पुस्तक करना छोटी पुस्तक में ये लिखते हैं कि इससे व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हर जगह भगवान है, तो जब वो पानी पीता है तो उसको स्मरण भगवान का स्मरण।
सही बात है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए जैसे हम यहाँ सीख रहे हैं कि भगवान जो जल का गुण है स्वाद, वह कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। ये बात वही बात है, जैसे सूर्य अपने स्थान पे प्रभाव धारण दे रहे हैं और अपनी शक्तियों की जगह द्वारा हर जगह व्याप्त है। शक्तियां निराकार हैं लेकिन सूर्य निराकार नहीं। तो अगर हम शक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं तो उससे हम शक्तिमान का स्मरण करना चाहिए। जैसे मैंने एक छोटा सा एक प्रश्न भक्त से किया, अरे भाई सारे डिपार्टमेंट बंद है लेकिन पावर प्लांट तो चल रहा है ना। फिर मैंने स्मरण हुआ, अरे कैसे मूर्तापूर्ण प्रश्न है, जब आप देख रहे हो बल्ब के जलते हुए तो स्वाभाविक सी बात है कि पावर प्लांट चल रहा है। हम तो खैर बल्ब के प्रकाश को देख रहे हैं, शक्ति को देख रहे हैं, लेकिन शक्ति के पीछे कौन है? पावर प्लांट है कि नहीं? क्या हमें पावर प्लांट तक जाने की जरूरत है? घुमा दीजिए, इको हो रहा
है। जल का स्वाद जल का मूलभूत कारण है,
मूलभूत गुण है। इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ ये है कि अगर स्वाद को निकाल दिया जाए, इस तन्मात्रा को निकाल देंगे तो जल का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये तो पढ़ रहे थे। यस,
कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है।
अब स्पष्ट समझ में आ रहा है ना, ये जो टेस्ट है ये भगवान की एक शक्ति है, समझ में आ रहा है? यस।
निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है।
You need phone?
क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं।
ये भी बहुत सुंदर बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बहुत सुंदर सुस्वादु वस्तु देता है, तो क्या केवल आप उस वस्तु को ग्रहण करते हैं, यह भी स्मरण करते हैं कि उस व्यक्ति ने प्रेम से वस्तु आपको दी है?
कृतज्ञता,
isn't it? कृतज्ञता तो है ही, लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर आपका उनसे प्रेम है तो कोई वस्तु अगर आपको दी खाने के लिए तो क्या उस व्यक्ति का स्मरण नहीं करते? लेकिन केवल हम खाते रहें और और स्मरण ना करें तो यह तो उचित नहीं ना। तो भक्त यह भी देखता है, प्रभुपाद जी एक जगह बहुत बड़े एक नियाग्रा फॉल्स है अमेरिका में शायद, तो वहां गए तो उन्हें प्रभुपाद जी कह रहे थे आप इस मतलब झरने को देख रहे हैं लेकिन उसको देख करके मुझे भगवान की शक्ति का स्मरण हो रहा है, भगवान का स्मरण हो रहा है। तो ये भगवत प्रेम होने के कारण ऐसा होता है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र हुए तार इष्ट देव स्फूर्ति। वो स्थावर अर्थात अचलायमान वस्तुओं को देखता है, अचलायमान समझते हैं, ऐसा ऐसा आप लोग चेहरा बना देते हैं, इसे लगता है मैं कुछ कुछ उर्दू बोल रहा हूँ ना क्या बोल रहा हूँ, चल नहीं सकता। और जंगम समझते हैं जो चल सकते हैं, उन सबको देखता है लेकिन उनको ना देख करके वह अपने इष्ट देव की स्मृति करता है, कृष्ण का स्मरण करता है।
परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारता सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है।
क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि देखिए जो भगवान की शक्तियां हैं उनका कोई आकार नहीं है, जैसे सूर्य की रोशनी का कोई आकार है नहीं है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि रोशनी सूर्य का कारण है। क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये सीधी सीधी बात है, इस जगत में जो भगवान की शक्तियां व्याप्त हैं वह निराकार हैं लेकिन इनके पीछे साकार भगवान हैं, तो झगड़े की कोई बात नहीं है। झगड़े की बात ये हो जाती है जब ये लोग बोलते हैं कि जो निराकार शक्तियां हैं वह भगवान जो साकार हैं उनके कारण बन जाती है, तब झगड़ा होता है, अन्यथा झगड़े की कोई आवश्यकता नहीं। यस,
अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश,
मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, कई बार सुना होगा फिर भी हम समझाते हैं। देखिए जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग है तो भेद दिखता है, स्पष्ट है। जैसे ये लैपटॉप इस हारमोनियम से अलग अलग है, भेद है इसका, लेकिन अभेद इस दृष्टि से है कि वह वस्तु उस वस्तु से दूसरी वस्तु पे आश्रित है, यदि तो उसको हम उस दृष्टि से अभेद कहेंगे। जैसे कार्य कारण की तरह कह सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि बादल और सूर्य में भेद है या नहीं है, भेद है बिल्कुल स्पष्ट, बादल अलग वस्तु है सूर्य अलग वस्तु है, बादल जलमय है और सूर्य अग्निमय है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बादल और सूर्य में अभेद भी है तो आप मानेंगे कि सूरज के द्वारा ही बादल की सृष्टि होती, तो उस दृष्टि से अभेद है, वैसे स्वरूपगत रूप से बहुत भेद है। तो अब अगर हम कहें कि माया, शास्त्री जी के मन में कुछ विरोध आ रहा है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा था कपिल, अरे सुनिए तो सही, ये गुरु महाराज की बात, आप लेक्चर सुनिए कपिल दिवाहुति संवाद, उसमें समझा रहे हैं। तो माया और भगवान में अचिंत भेद अभेद तत्व है। माया क्या कृष्ण से भिन्न है? बिल्कुल है, जड़ है माया और भगवान पूरी तरह चेतन है, तो उस दृष्टि से भेद है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन माया कृष्ण पे आश्रित है कि नहीं? तो उस दृष्टि से भेद नहीं। उस दृष्टि से जीव और भगवान में भेद अभेद है कि नहीं? जीव क्या भगवान है? नहीं है। लेकिन अभेद क्यों है? क्योंकि जीव गुणात्मक रूप से भगवान के समान है और जीव भगवान पे आश्रित है, तो यानी कि भगवान को इसीलिए परम सत्य को उनकी शक्तियों के साथ समझा जाना चाहिए। उनकी शक्तियां भगवान से अभिन्न है भी और नहीं भी है। क्या कुछ विरोध है? ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश और सूर्य, क्या आप कह सकते हो कि सूर्य का प्रकाश सूर्य है? नहीं। और हाँ, हाँ भी और नहीं भी। तो सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं है, लेकिन आप सूर्य के प्रकाश की सत्ता को सूर्य से अलग कर सकते हो? एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते। सूर्य का प्रकाश क्योंकि सूर्य पे आश्रित है इसलिए वह सूर्य से अभिन्न है। दूध दही भी कह सकते हैं। यस, दूध जो है और दही है वे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन दही कहाँ से आता है? दूध से आता है, तो उस दृष्टि से अभेद है। कुछ कहना चाहते थे, इतना दूर क्यों बैठे हैं? अगर कहना तो आगे बैठिए।
ठीक है,
दूध का दही करना है। यस, हाँ बताइए।
वो ठीक है उसमें, मगर भेद को हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इंद्रियों और तर्क के द्वारा, मगर अचिंत का यहाँ पे अर्थ क्या है ना,
कि जो भेद है वो अपने इंद्रिय और तर्क के द्वारा मैं भी नहीं जान सके, मगर
देखिए बात ये
शास्त्र के द्वारा जान सकते।
हम लोग तर्क के द्वारा या बुद्धि के द्वारा केवल उपमाओं को समझ रहे हैं, भगवान को नहीं समझ पा रहे। भगवान किस प्रकार से अपनी शक्तियों में प्रवेश कर जाते हैं, देखिए इसीलिए तो हम सब कहते हैं ना अर्चा वगैरह ऐसे देखने से बाहर से भौतिक लगता है, लेकिन क्योंकि वे भगवान की अचिंत्य शक्ति है, वह अपनी अचिंत्य शक्ति से उस भौतिक वस्तु में भी प्रवेश करके अवतरित होकर के हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। डजंट मेक सेंस। सो अब वो कैसे करते हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम तो केवल उपमाओं को समझ रहे हैं, हमारी शक्ति तो केवल उपमा समझते हैं, उपमा क्या कहते हैं एनालॉजी, उसको समझने की शक्ति है हमारे पास। अब भगवान कैसे कर रहे हैं, अब इसे मान लीजिए भगवान जल के रूप में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, सॉरी जल में रस किस प्रकार से अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं, तो हम वो नहीं समझ सकते। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरह, ये जगत भगवान से ही आया है, भगवान के ही समान है, अर्थात भगवान नहीं है लेकिन भगवान की शक्ति है और इस कारण से पूजनीय भी है। पूजनीय अर्थात हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखना, भोग दृष्टि से नहीं देखना। मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो भगवान की शक्तियां किस तरह से कार्य कर रही वह समझना हमारे लिए अचिंत है, भौतिक दृष्टि से हम तो केवल उपमाओं को समझने का प्रयास कर, सिद्धांत समझने का प्रयास कर। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हम समझ जा रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। इसको मैंने महाराज से सुना था, तो आप लोग कपिल देवाहुति संवाद सुन सकते हैं, महाराज बढ़िया से समझाते हैं इसको। यस ब्रो।
सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है।
और आप ये समझ सकते हैं कि ओंकार बोलते हुए कृष्ण का स्मरण करना कठिन है। हम भक्तों के लिए भी ओ और कृष्ण है तो कृष्ण का ही स्वरूप, उसमें कोई कठिन बात नहीं, लेकिन स्मरण करना कठिन होता है। नहीं, ओम बोल करके ओम का स्मरण हो जाता है, लेकिन ओम बोलकर कृष्ण का स्मरण हो ये कठिन होता है। ऐसे तो ओम भगवान का ही शब्द स्वरूप है, तो इसलिए भगवान ने व्यवस्था कर दी, चलो तुम ओम बोलते रहो और ओम का कुछ निर्विशेष ध्यान करते रहो, तो उसी में खुशी रहो। अगर तुम स्वरूप का स्मरण नहीं करना चाहते लेकिन भगवान का संपर्क प्राप्त करिए। यस यस प्रभु, कुछ बोल रहे थे। ओ भयभीत क्यों रहते हैं, कौन उत्तर देगा? ये जो निर्विशेषवादी हैं वह कृष्ण के असंख्य नामों को पुकारने से भयभीत क्यों रहते हैं? वास्तविक कृष्ण को भौतिक समझते हैं। यह उत्तर तो नहीं है। Why they are afraid to chant Krishna's names? भगवान का नाम तो भय को हटा देता है, ये एक अच्छा प्रश्न है, कोई नहीं सोचता है। आप तो अभी आए, अच्छा आपका जन्म तो अभी हुआ, आप इतना दूर क्यों बैठे, आगे आइए। एक प्रश्न है और ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भगवान के नामों को जो निर्विशेषवादी हैं वे क्यों पुकारने में भयभीत रहते हैं? यस,
कृष्ण के भक्त होते हैं वो उनके दास होते हैं,
कृष्ण के भक्त कृष्ण के दास होते हैं। थोड़ा पास से बोली मुझे,
तो मायावादी किसी के दास बनना नहीं चाहते।
यस वेरी नाइस आंसर। भगवान के दास बनना नहीं चाहते हैं इसलिए भगवान के नामों को स्वीकार नहीं करना चाहते।
मालूम क्यों, माया के भी दास है।
हाँ वाह, तो आप दास क्यों नहीं देते? अच्छा अगला श्लोक आप समझा देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वह ओम का ही ध्यान करना चाहते हैं, उसको और गंभीरता में देखें, इस जगत में जो भी स्वामी है वो हमारा तेल निकालता है, तो उस प्रकार से है कि नहीं, खून पीता रहता है, ऐसे कहना चाहिए। लेकिन क्या भगवान ऐसे स्वामी है? नहीं। नारद मुनि बड़े आश्चर्य से कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज आप तो इतने महान भक्त हैं कि आप कृष्ण की पूजा नहीं भी करते हो तो भी वो आपके घर में पड़े रहते। कितना प्रेम है युधिष्ठिर महाराज का हम कल्पना नहीं कर सकते। कृष्ण को अपना भाई मान रहे हैं, छोटा भाई, पूजा नहीं कर रहे हैं तो भी कृष्ण के घर में ही पड़े रहते हैं। कब हमारी स्थिति ऐसी होगी पता नहीं, लेकिन प्रेम बड़ा सुंदर वस्तु है। पढ़िए।
कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वह मोहग्रस्त रहते हैं, अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है।
मोह क्या है? संसार को वह भगवान के संबंध में नहीं देख पाते। मुझे माइक पे बोल ही बातें सुनाई पड़ती हैं। यस,
मोह का मतलब होता है जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानता है, मतलब वो शरीर नहीं है। हाँ। लेकिन अपने आप को शरीर मानता है, यही मोह है।
और इस जगत को शाश्वत मानते हैं, शरीर इस जगत का संबंध भगवान से नहीं देखते हैं। इस प्रकार से ठीक है। और कोई कुछ प्रश्न करना चाहते हैं?